श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 26। हृदि कामो ब्रुव क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदा अस्याद्वाक् सिंधवो मेढ्रान् निर्तीर्पायोरघाश्रयः। हृदि कामो ब्रुवः क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदा अस्यात् वाक् सिंधवो मेढ्रा निर्तीर्पायोरघाश्रयः। हृदि कामो ब्रुवः क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदा अस्याद्वाक् सिंधवो मेढ्रा निर्तिर्पायोरघाश्रयः। हृदय से कामः, काम, भ्रुवः, भौहों से क्रोधः, क्रोध, लोभः, लालच च भी अधर दच्छतात्, होठों के बीच से, आस्यात् मुख से, वाक, वाणी, सिंधव, समुद्र, मेढ्रात, लिंग से, नृतिर, निम्न कार्य, पायः, गुदा से, अघ आश्रय, सारे पापों का आगार। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनके भौहों के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। तात्पर्य, बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वत्ता के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है जिसकी अभिव्यक्ति भौहों के मध्य में होती है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भौहों के मध्य के स्थान में केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। जब यह संतुति की जाती है कि मनुष्य इच्छा विहीन बने तो यह समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हों। भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करता है, इस तरह उसे इच्छा विहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा के संबंध में होती है। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है और उसकी भौहें क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है। कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है। केवल शुद्ध भक्त से अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस अध्याय का शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। चतुष्कुमार जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मन से ब्रह्मा जी ने इन चार कुमारों की सृष्टि की और बहुत ही विशेष इनकी सृष्टि हुई। इनकी उत्पत्ति बहुत विशेष थी, इसलिए ब्रह्मा जी की आशाएं भी बहुत विशेष थीं इनसे। यहां पर हमें यह समझ में आता है कि जब भी जीव किसी विशेष सृष्टि का उत्पादन करता है, उसके दृष्टिकोण में वो चाहे कितनी भी विशेष हो, भगवान के दृष्टिकोण में वो साधारण होती है। परंतु जब जीव जो भी सृष्टि करता है भगवान के अधीन होकर, जैसे यहां ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं, वो प्राइमरी क्रिएटर नहीं है, सब सृष्टि की सामग्री उन्हें भगवान से मिली है। परंतु जैसे ही उन्होंने चतुष्कुमारों की उत्पत्ति की तो आशा उनसे बांधने लगे कि मेरे आदेश अनुसार इन्हें अब कार्य करना चाहिए। जैसे कोई साधारण पिता भी होता है, वो संतान उत्पत्ति करता है तो आशा रखता है कि ये जो मेरा संतान है ये मेरे आदेश अनुसार कार्य करे। होता बहुत कम है, परंतु कम से कम माता पिता आशा तो रखते हैं कि मेरे आदेश अनुसार मेरे संतान मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तो साधना भक्ति में भी हम देखें, हम जब भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारी तरफ से हम कुछ एक सृष्टि कर रहे हैं हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। जैसे जब दीक्षा होती है तो एक साधक की दीक्षा उसका जन्म है, उसकी सृष्टि है। और गुरु जो हैं वो अब अपेक्षा रखते हैं अब इस नई उत्पन्न संतान से। और हम भी जब साधना भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे जो देवताओं के गुण हैं वो प्रदर्शित होना प्रारंभ होते हैं हमारे अंदर। ये श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि एक साधक जब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आता है तो जितने सुरों के गुण हैं, देवताओं के गुण हैं, वो उस साधक के जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान की सेवा हेतु सृष्टिगोचर होते हैं और असुरों के गुण कम होते हैं। तो जब हम ऐसे गुणों को हमारे अंदर देख पाते हैं तो एक आकांक्षा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, एक सृष्टि हुई है। पहले हमारे अंदर उस प्रकार के गुण नहीं थे, अब जब गुण धीरे धीरे दिखते हैं तो गुणों के वजह से हमारे अंदर आशाएं बंधती हैं। जैसे कि यदि एक भौतिक उदाहरण भी लिया जाए, जब कोई व्यक्ति अशिक्षित रहता है तो इतनी आशाएं नहीं होती उसकी, जैसे ही शिक्षित हो जाता है तो अब आशाएं बंधने लगती हैं। कॉलेज में भी रहता है तो आशाएं शुरू हो जाती हैं बंधना कि अब मैं इस MBA कॉलेज में हूं, मैं इस MBBS कॉलेज में हूं, मैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज में हूं, तो आशाएं और आकांक्षाएं बंधना शुरू हो जाती हैं। तो हो क्या रहा है कि वो कुछ गुण को अर्जित कर रहा है। कौन से गुण को? वो विद्या के गुण को अर्जित कर रहा है। यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई विद्यावान भी क्यों ना हो, सरस्वती की कृपा भी क्यों ना उसे प्राप्त हो, यह जरूरी नहीं कि उसके हृदय की काम वासना उस विद्या की वजह से कम हुई है। इसका अर्थ यह है कि यदि साधना भक्ति में हमें जो बाह्य गुण प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम शुद्ध हो रहे हैं। ये प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि हां अब मेरी दीक्षा हो गई है, अब मैं गायत्री मंत्र बिना पेपर में पढ़े जप कर सकता हूं, मैं तिलक अच्छा लगा सकता हूं, मैं प्रवचन दे सकता हूं, मैं कीर्तन अच्छा कर सकता हूं, पूरी मंगल आरती बिना देखे गा सकता हूं। तो ये सारे जो गुण हैं ये देवताओं के गुण हैं जो कि प्रकृति हमें भाड़े पर लाकर देती है। किस लिए? भगवान की सेवा हेतु। परंतु हम धीरे धीरे आश्रय किनका लेना लगते हैं? भगवान का आश्रय छोड़कर हम ये जो बाह्य गुण हैं इनका आश्रय लेना प्रारंभ कर देते हैं। वी स्टार्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ द एक्सटर्नल बेनिफिट्स विच वी गेट आउट ऑफ परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस रादर देन टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो आज का हमारा शीर्षक यही है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग शेल्टर रादर देन जस्टिस। देखिए ये दो चीजें इस भौतिक संसार में बहुत आवश्यक है जानना। जस्टिस, इंसाफ जिसे कहते हैं, बहुत ये शब्द हम सुनते हैं, सुने होंगे, इंसाफ मेरे साथ ना इंसाफी हुई, टीवी में जितने सारे ये सास बहू के सीरियल हैं सब इसी को दर्शा रहे हैं। सास के साथ ना इंसाफी हुई, बहू कहती है मेरे साथ ना इंसाफी हुई, पति कहता है ये दोनों के वजह से मैं भुगत रहा हूं, मेरे साथ ना इंसाफी हुई। जहां पर देखो इंसाफ की बात कितनी हो रही, जस्टिस। तो जब हम साधना भक्ति में लगते हैं तो कई बार हमारी भी वृत्ति उसके झुकाव उस तरफ रहता है कि क्या भगवान कृष्ण मेरे साथ इंसाफ कर रहे हैं, मैं जो इतना कुछ कर रहा हूं उनके लिए, क्या मेरे साथ एक साधक होने के नाते क्या मेरे साथ इंसाफ किया जा रहा है। ये प्रश्न हम जोर से नहीं पूछते, परंतु बोलते ना बैक ऑफ द माइंड, ये एक प्रश्न हमेशा विद्यमान रहता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ही एक विशेष यूनिक भक्ति है। अन्य किसी महानुभाव की पूजा आराधना की तुलना में भगवान श्री कृष्ण की आराधना और भक्ति बहुत ही यूनिक है। उदाहरण, जैसे भगवान ने गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम यदि केवल भगवान से इंसाफ चाहते हैं तो भगवान केवल इंसाफ लाकर देंगे हमें। तो भगवान, उदाहरण यदि हम ये लें कि जब हम अपना सेलफोन उठाते हैं और कोई नया नंबर है जो स्टोर्ड नहीं है उस सेलफोन में, उसको हम डायल करते हैं 98 जो भी, कितने डिजिट होने चाहिए 10, है ना, 10 डिजिट होने चाहिए। तो पहले तो हम चेक करते हैं जिसने भी नंबर दिया है 10 डिजिट है कि नहीं, हाँ फिर शायद ठीक होगा। लेकिन अब तक विश्वास नहीं, क्योंकि जिसको हम डायल करने वाले हैं वो अगला व्यक्ति अब तक फोन उठाया नहीं। तो हम मान लो सुरेश से बात करना चाहते हैं, तो हमने डायल किया नंबर, वहां पर रमेश ने फोन उठाया, तो अब रमेश ने फोन उठाया तो गड़बड़ क्या हुई, कहां पर क्या गड़बड़ हुई, क्या वो झूठ बोल रहा है, सुरेश अपने आप को रमेश बोल रहा है, या मुझे गलत सुनाई दे रहा है। तुरंत हम क्या चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं, जिसने नंबर दिया फिर से रीचेक करते हैं, फिर पता लगा अरे 4 के बदले तुमने 5 लगा दिया, एक डिजिट, हाँ एक डिजिट अगर हम यहां वहां कर देते हैं तो किसी और को डायलिंग चला जाता है ना। अब यदि 10 डिजिट में जो हम जिसको कॉल करने वाले हैं उसके सारे डिजिट उसमें हैं, लेकिन थोड़ा अदला बदली हो गया है, 4 लास्ट आना चाहिए था तो 5th नंबर पर 4 है, तो हम ये नहीं कह सकते अरे कम से कम है ना तो क्यों नहीं उधर जा रहा है कॉल। जैसे हम डायल करते हैं वो नंबर अपने जगह पर होना चाहिए, वही होना चाहिए, नेटवर्क भी होना चाहिए, आपका फोन चार्ज होना चाहिए, वो आदमी वहां पर होना चाहिए उठाने के लिए, उसका भी फोन चार्ज होना चाहिए, उसके उधर भी सिग्नल होना चाहिए, कितने सारे कंडीशंस आ जाते हैं, कंडीशन लिविंग एंटिटी है, तब जाकर फिर बात होती। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण को डायल करते हैं, क्या है डायलिंग नंबर, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सोचते हैं कि नंबर तो सही मिला है, लेकिन ये राम के बदले रावण क्यों आ रहा है, प्रेम के बदले काम क्यों आ रहा है, तो फिर से नंबर चेक करना है कि डायलिंग बराबर किया है कि नहीं हमने, और फिर बाकी कंडीशंस, नंबर भी सही होगा, आपकी बैटरी चार्ज है कि नहीं, सेवा के द्वारा और बराबर भक्तों के संग में जहां पे सिग्नल पहुंचता है, सारे चार टावर दिखेंगे भक्तों के संग में है कि नहीं, सब कुछ चेक करना है। तो इसलिए बहुत ही स्पेसिफिक है भगवान श्री कृष्ण। तो हमें लगता होगा कि अरे भाई भगवान तो करुणा सिंधु हैं, महावदन्याय हैं, तो इतना स्पेसिफिक होना क्यों? क्योंकि भगवान जो अपनी विशेष कृपा है वो देना चाहते हैं, और उस विशेष कृपा को हम जब तक कि एक विशेष साधक नहीं बनेंगे तब तक उसे हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा स्क्रीनिंग मशीन, जैसे एयरपोर्ट पे होता ना स्क्रीनिंग मशीन, तो हमें समझता नहीं, हम लोग बस वहां से गुजरते हैं, हाथ ऊपर कर कर खड़े रहते हैं, वो बोलता है हाथ ऊपर करो, खड़े रहो, हम वहां से जाते हैं, वो एक आदमी छिपा हुआ कंप्यूटर पे, कंप्यूटर भी छिपा रहता है, वो देख रहा है इसके बैग में क्या क्या जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या जा रहा है। वो आपने कभी स्क्रीन देखा है उसका, वो जो मेटल डिटेक्टर या जो स्क्रीनिंग सिक्योरिटी का रहता है। मैं हाल ही में जयपुर से आ रहा था तो वो जो सिक्योरिटी वाला स्क्रीनिंग पर बैठा हुआ था कंप्यूटर के सामने, अचानक उसने कहा ये बैग किसका है, जो मेरा बैग था, आप साइड में आ जाओ। तो ऐसा डरा देते हैं वो लोग, साइड में आ जाओ। तो जैसे ऐसे बोलते बाकी लोग देखते रहते हैं, साइड में ले लिया इसको, तो अपना बैग भूल के देखते हैं इसके बैग में क्या देखते हैं। तो उसने कहा कि आपके बैग में बैटरी है, निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा बैटरी, मैं क्यों बैटरी लेके चलूंगा। बोला नहीं, स्क्रीन दिखा रहा है आपके बैग में बैटरी है, बैग खोलो। बैग खोला, कहीं बैटरी दिखी नहीं, अलार्म क्लॉक के अंदर बैटरी जो थी वो बाहर निकाली उसने, ये बैटरी। तो देखो जो हम लोग देख नहीं पाए उसको भी नहीं बैटरी समझ में आ रही थी, उसमें दिखा रहा था बैटरी है कहीं, तो बैग खोला यहां कहीं बैटरी दिखी नहीं, फिर उसको ध्यान में आया अलार्म क्लॉक के अंदर इसकी बैटरी हो सकती है। बोला आपके पास कोई अलार्म क्लॉक है ना? हाँ, खोलो उसको, उसके अंदर बैटरी। मैं जर्मनी में था, वहां पर उस स्क्रीन पर उसने ऐसे बोला पानी है आपके कैबिन लगेज में, पानी नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई बॉटल वॉटल लिया नहीं। तो तिलक का जो छोटा सा होता है वो डिब्बी, उसके अंदर पानी। बोला ये पानी है। बोला ये क्या पानी है, ये क्यों लेके जा रहे हो। बोला ये तिलक लग, उसको क्या समझा भाई तिलक लगाना है इसके। बोला नहीं, इसको पियो। एक हमारे भक्त, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था तो वो क्रिमाफिन की बॉटल लेके गए थे, तो वहां पर वो स्क्रीनिंग में पकड़ लिया क्रिमाफिन की बॉटल उसने। उसने बोला ये क्या है, अभी वो अपने इंडिया की बॉटल है क्रिमाफिन, उन्होंने कहा कि ये पेट साफ करने के लिए। तो अभी बोला हमको पता नहीं, ये आपको पीना होगा। तो पूरी बॉटल भरी हुई थी। बोला या तो आपको लेके जाना है तो इधर पीना होगा, नहीं तो फेंको यहाँ इसको। यहाँ तो बताया भाई ये आपको ही तकलीफ होगी, मैं पी लूंगा तो एयरलाइंस को। तो ये जो स्क्रीनिंग मशीन्स होती हैं, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती वो ये लोग सब देख लेते। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्क्रीनिंग मशीन उनका है। हालांकि हम देखेंगे मदन गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, हमको लग रहा होगा सब अच्छा चल रहा है, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। नहीं, लेकिन भगवान का जो डिटेक्टर है वो एकदम अंदर जाके हमारे हृदय में, हमारे मन में, कोने में जो एक भौतिक इच्छा पनप रही है, भगवान उसको देख रहे हैं। वहां पे वो कोने में बैटरी पड़ी है, लाइव बैटरी। तो ये जो सिद्धांत है, जस्टिस एंड शेल्टर, जैसे कि ध्रुव महाराज, अब देखो ध्रुव महाराज और पुतना, यदि इन दोनों का उदाहरण हम लें, तो भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के समक्ष। ध्रुव महाराज अब शुद्ध हो चुके थे, परंतु भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने जो इच्छा की थी शुरुआत में क्या थी? मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो लो, ध्रुव महाराज के नहीं थी, मुझे भी, मैं अब संभल गया हूं। भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि तुमने वो एक भौतिक इच्छा रखी थी और उसके वजह से तुमने भक्ति प्रारंभ की थी, ये लो। और पुतना जो कि भौतिक इच्छा लेकर आई थी, भगवान ने क्या देखा? दूध पिलाया इसने मुझे, तो पुतना को अपना भगवत नाम दे दिया और ध्रुव महाराज को चलो राज्य करो। तो भगवान किसके साथ कैसे डील करते हैं, ये हम पेपर पर कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते। कि पूतना जो मारने के लिए आई, उसे तो भगवान ने धात्री का पद दे दिया गोलोक वृंदावन में। केवल क्या देखा कि इसने मुझे एक मां की तरह दूध पिलाया, चाहे विष भरा हुआ दूध हो, मां की तरह पिलाया। और ध्रुव महाराज जो कि इतनी कठोर तपस्या किए, इतनी शुद्धता से भगवान की आराधना की, भगवान का नाम जब मंत्र उच्चारण किया, वो भी नारद मुनि के आदेश के अंदर, ध्रुव महाराज को राज्य करने के लिए यहां पर रखा। तो होता क्या है कि साधना भक्ति में हमारी जब आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो कि इस भौतिक संसार का स्वरूप है, क्यों इस भौतिक संसार में जीव आशाओं से इतना भरा पूरा रहता है, कितनी सारी आशाएं रहती हैं? क्योंकि भगवान ने यह संसार अशाश्वतम बनाया। जब कोई भी चीज अशाश्वत रहती है तो उसके साथ आशा आ जाती है, होप्स। एनीथिंग विच इज परमानेंट यू स्टार्ट लूजिंग होप्स, एनीथिंग विच इज टेम्पररी यू स्टार्ट हैविंग होप्स कि अब यह बदलेगा। मेरा दुख है ना, यह भी टेम्पररी है, बदलेगा, आशा रहती है। यदि सुख है तो भी बदलेगा, तो फिर आशा क्या रहती है? कोई खतरा ना आ जाए, वो भी एक आशा का दूसरा फ्लिप साइड है, भय। तो साधना भक्ति में जब हम आते हैं तो दो चीजें हैं, एक तो जब हमारे अनुसार सब कुछ हो रहा है तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मेरे अनुसार सब कुछ हो रहा है। और जब हमारे अनुसार कुछ नहीं होता तो तुरंत हम क्या करते हैं? तकरार। आजकल नासिक में सब जगह बिलबोर्ड है, तकरार, करप्शन, तकरार कीजिए सुनवाई होगी, सुनवाई। हाँ, ये कोर्ट के अंदर होता ना सुनवाई, आप तकरार करो हम सुनेंगे, बस आप बोलते रहो हम सुनेंगे, इसको इसलिए बोलते ना सुनवाई। तो कई बार भक्ति में हमारी भी मेंटालिटी उस प्रकार की हो जाती कि हम इनिशियली भक्ति में आते हैं तकरार करते हुए नहीं इतना, लेकिन फिर जब हमारी आशाएं बनती जाती है कि ये भी वो भी, ये भी वो भी, जैसे कोई नया नया शादी करता है तो सब कुछ एकदम हैप्पीली मैरिड टाइप, फिर बाद में कंप्लेंट्स, तकरार, ये सब प्रारंभ, फिर बाद में क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाते हैं। तो हम देखिए साधना भक्ति में जब आए तो साधना भक्ति में शुरुआत में हम इस्कॉन में जब आए तो हमने क्या देखा, ये देखा कि कौन कौन से एरियाज हैं इस्कॉन के और भक्ति के जो मेरे वेवलेंथ के हैं, वो हमें अट्रैक्ट किए ना, इसलिए तो धीरे धीरे हम थोड़ा और जानने की कोशिश की और अंदर घुसने की कोशिश की। तो किसी को क्लीनलीनेस बहुत अच्छा लगता है, वहां मैं इस्कॉन में ही जाऊंगा क्योंकि मंदिर बहुत साफ रहते हैं इनके, तो उसका कनेक्शन क्या था, क्लीनलीनेस। कई जो हैं बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, पंक्चुअलिटी, हाँ इनका सब कुछ पंक्चुअल रहता है, ट्राई करते हैं हम। तो कोई अगर पंक्चुअलिटी से आकर्षित है, अपने जीवन में वो बहुत पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, क्लीन है, तो वो जब भक्ति में ये सब चीजें देखता है तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना प्रारंभ करता है। किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, हाँ बाकी मंदिरों में कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं होता, बस खाली एक घंटी रहती है, यहां पे तो मृदंग ही मृदंग, कितने सारे करताल ही करताल से लग रहा है, सभी लोग हाथ में करताल ये जोर जोर से बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो वो उसका इंटरेस्ट जागृत करता है म्यूजिक, कोई डांस अच्छा पसंद करता है तो वो उसका इंटरेस्ट जागृत करता है। तो इनिशियली कोई खाना पसंद करता है तो हमारा कॉन्टैक्ट इनिशियली होता है जो हमें क्लिक किया चीज इस्कॉन में, मुझे ये क्लिक कर दिया है ना, क्लिक क्लिक हुआ ये। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जब हम भक्ति करना, साधना करना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे मनोधारणा के अनुसार नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर इनिशियली हमें क्या चीजें क्लिक की जो मुझे आनंद देती हैं, है ना, म्यूजिक मुझे आनंद देता है, डांस मुझे आनंद देता है, क्लीनलीनेस मुझे आनंद देता है। पर धीरे धीरे जब हम भक्ति में अग्रसर होते हैं तो बताया जाता है उनको जो आनंद देता है ना वो करना है, और फॉर्चुनेटली आपको जो अच्छा लग रहा है उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, ये हमारी स्थिति है कि फॉर्चुनेटली मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है, फॉर्चुनेटली मुझे क्लीनलीनेस अच्छा लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीजें भगवान को अच्छी लगती हैं लेकिन हम थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं फिर। तो तब तकरार अंदर से थोड़ी थोड़ी शुरू होता है, वो जो उसका मुंह है ना, तकरार का मुंह, वो अंदर से अपना मुंह दिखाने लगता है कि ये भगवान ऐसे क्यों किए, ये भगवान इतना क्यों कठिन बना के रखे हैं इसको, शुरू में तो इतना नहीं दिखाया था, फिर धीरे धीरे, और ये भक्त भगवान के, बाप रे, भगवान तो ठीक है वो तो ऑल्टर पे रहते हैं लेकिन ये जो डिवोटी को छोड़ दिया है कमरे में वो बहुत मुश्किल है। तो अब इसमें हमें ये जानना है कि जितना हम जस्टिस की अपेक्षा रखते हैं भक्ति में, वेन एवर वी टेक शेल्टर ऑफ जस्टिस वी लूज शेल्टर ऑफ कृष्णा। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, पुरुषोत्तम प्रभु इनका नाम, तो ये बहुत आकर्षित हुए इस्कॉन का लॉजिक, फिलोसॉफी का लॉजिक इन्हें बहुत अच्छा लगा, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल, लॉजिक इन्हें बहुत अच्छा लगा। भौतिक संसार का जो भी लॉजिक श्रील प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया, इनको बहुत अच्छा लगा। अमेरिका के ही सब कुछ इन्हें अच्छा लगा, कब तक? जब तक प्रभुपाद ने यह बात नहीं कही थी। कौन सी बात? मैन नेवर वेंट ऑन मून। ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई उनको, ये बहुत ज्यादा हो गया। और वो भी प्रभुपाद ने कब कहा? 1969, जब पूरा अमेरिका, पूरा संसार देख रहा है टीवी पे मैन इज लैंडिंग ऑन मून, और प्रभुपाद देखते हुए बोल रहे हैं बोगस है ये सब। सोचो। तो बाकी सारे जो और शिष्य थे उनको कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनको आदमी मून पे गया भी नहीं भी गया उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो प्रभुपाद बोले तो भी फर्क नहीं पड़ा। चलो अपना सोला माला हो रहा है ना, पूरा प्रसाद बनाए ना, जहां वो सबसे बड़ा टेंशन, प्रसाद बनाए कि नहीं बनाए, वो मून पे लैंड किया नहीं किया छोड़ो। लेकिन ये एक डिवोटी, इनको प्रभुपाद का सब कुछ अच्छा लगा, ये एक चीज तकरार किया उन्होंने, नहीं, अगर ये आदमी ये कह रहा है कि मैन नेवर लैंडेड ऑन मून, इट इज अ होक्स, इट इज बोगस, तो मैं इस आदमी के कोई लेना देना नहीं, छोड़ के चलेगा इसको। सोचो, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति जो उनको मिल रही थी, इस एक मुद्दे के कारण भक्ति छोड़ दिया उन्होंने। हमें लग रहा होगा, हमें आश्चर्य लग रहा होगा, कितना दुर्भाग्य है ना। कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है, सबसे सिली से सिलियस्ट और स्टूपिडेस्ट थिंग कुछ होगी जो हमारे लिए क्लिक नहीं करेगी भक्ति में, तो हमको लगेगा धीरे धीरे क्या होता, एक साथ नहीं वो बच्चा बड़ा होता, तकरार का बच्चा, पहले 1 महीने का, 2 महीने का, 9 महीने का, फिर बाद में और बड़ा, 6 फुट का, 6.5 फुट का, स्लोली दैट कंप्लेन एंड क्रिब एंड डाउट स्टार्ट्स टू ग्रो दैट बेबी। तो हमें ये सब डिटेक्ट करना है कि हमारी साधना भक्ति में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसके वजह से, ये नहीं कि वो बहुत इनोसेंट एक हमारा क्या बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा भगवान से या भक्ति से या आचार्यों से, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यदि हमारे शरणागति में बाधा ला रहा है, सबसे पहले वो डिफरेंस ओपिनियन करता क्या है, शुरुआत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, फिर वो रूप लेता है इसका, किसका, तकरार का, और फिर हमारे साथ कुछ हो जाए उसको लेकर उल्टा सीधा। क्या हुआ था ये पुरुषोत्तम प्रभु के साथ, कि ये पहले से इनके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि ये प्रभुपाद ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो हुआ क्या कि प्रभुपाद का शेल्टर कम हुआ और साइंस के प्रति शेल्टर इनका पक्का हुआ। तो माया करती क्या है कि जैसे ही हमारे मन में इस प्रकार के संशय या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होते हैं, तो वो भगवान और गुरु का शेल्टर फीका करने लगते हैं और माया के प्रति शेल्टर और गहरा करने लगते हैं। तो उनका साइंस के प्रति जो शेल्टर था लेने का प्रवृत्ति, वो पहले इतनी नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद ने जब ये बोल दिया तो थोड़ा और ग्रिप पकड़ने लगा, किसके अंदर, शेल्टर इन साइंस। और फिर एक डिसाइपल प्रभुपाद के सर को मसाज कर रहे थे जब टीवी पे दिखाया जा रहा था वो, तो देख रहे हैं मैन पुटिंग हिज फर्स्ट स्टेप ऑन मून, तो उसका हाथ रुक गया, देख रहा है वो। तो प्रभुपाद कहे, प्रभुपाद ने कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको क्या देख रहा है, तो वो तो पूरा ढोंग है, बेवकूफ बना रहे दुनिया, ठीक से मसाज करो। ठीक से मजा लिया, शुरू कर दिया उसने। और फिर ये पुरुषोत्तम प्रभु उस समय जो ये सब सुने, उसके कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम प्रभु किचन में थे और किचन में कुछ तो हुआ जिसके वजह से कुछ धुआं उनके चेहरे को काला कर दिया। तो जैसे वो आए तो प्रभुपाद देखे, तो प्रभुपाद ने हास्य में कह दिया, ओ इट लुक्स लाइक पुरुषोत्तम हैज जस्ट कम फ्रॉम द मून। बस बोलते ना, दैट वॉज द लास्ट ब्लो टू ब्रेक द कैमल्स बैक। बस खत्म, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो हमारी साधना भक्ति में हमें क्यों इतना चौकन्ना रखा जाता है? हमारे आचार्य इतना हमें वार्न कर कर चौकन्ना क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे जो अंदर अनर्थ हैं वो कौन कौन सा रूप ले सकते हैं, कौन कौन सा रूप ले सकते हैं। राधानाथ महाराज भरत महाराज की कथा सुना रहे थे और भरत महाराज की कथा सुनाते हुए भरत महाराज आकर्षित हुए एक हिरण से। तो राधानाथ महाराज ने कहा, फॉर एवरी साधका माया हैज अ स्पेशल डियर, विशेष हिरण है। भरत महाराज के लिए विशेष हिरण माया देवी ने वहां पर प्रस्तुत किया। रामायण में भी विशेष हिरण आया था, वो अलग था, भरत महाराज अलग, उनका जो डियर था अलग था, सीता देवी आकर्षित हुई वो डियर अलग था। तो महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि माया देवी शी हैज अ स्पेशल डियर फॉर एवरी स्ट्रगलिंग साधका एंड हाउ शी प्रेजेंट्स, हियर इज अ डियर माय डियर। डियर बोल बोल के वो डियर को प्रेजेंट करती हो। तो अब हम यदि इसका विश्लेषण करें कि क्यों हमारे मन में कई बार ये जस्टिस सीकिंग मेंटेलिटी आती, क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ गुण दूसरे देखते हैं, हम भी महसूस करते हैं, एक हमें एक विश्वास रहता है कि हाँ मेरे अंदर ये गुण है। जैसे हम लोग ट्रेकिंग के लिए जा रहे थे अंजनेरी, तो वहां लोकल लोगों से हमने पूछा कि कितनी दूर है, इधर ही बस थोड़ा और इधर ही। तो मैं और गोविंद प्रभु चर्चा कर रहे और बाकी सब जो बच्चे एकदम इधर ही, मतलब इधर ही, इधर तो खुश हो गए, तो और थोड़ा फास्ट चलने लगे, फिर देखे इधर ही इधर ही इधर ही किधर ही। तो हम लोग एक छोटा सा साक्षात्कार ये था कि उसके लिए ये चढ़ाई कुछ नहीं, क्योंकि वो रोज कर रहा है, इसलिए वो बोलता है इधर ही है। हम बोल रहे थे कि जैसे हमको कोई प्रवचन देने कहता है, अरे प्रवचन ही देना है ना, एक घंटा ही बोलना है ना, उसमें क्या है? कोई नया भक्त उसको बोलो प्रवचन देना है, एक घंटा प्रवचन देना है, उस आदमी को व्यासासद पे बिठा दो, टेंशन आ जाएगा, पसीने पसीने छूट जाएंगे। तो जो जिसमें माहिर होता है उसके लिए वो बहुत आसान चीज हो जाती है कि नहीं? तो धीरे धीरे भक्ति में हम जिसमें एक्सपर्ट बनने लगते हैं, कीर्तन करने में, प्रवचन देने में, ड्रेसिंग करने में, कुकिंग करने में एक्सपर्ट बनने लगते हैं, तो हम फिर उसका आश्रय लेने लगते हैं। वी टेक स्टार्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ आवर एक्सपर्टीज। जैसे हम कोई व्यक्ति बहुत मॉरल है, नैतिकता बहुत है उसके अंदर, तो नैतिकता
होने के वजह से बहुत वो शुद्ध जीवन जिया है, नैतिक जीवन जिया है। तो नैतिकता और शुद्धता के वजह से वो डिमांड करता है इंसाफ, है कि नहीं? इंसाफ डिमांड करता है कि मेरे पास नैतिकता है तो मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जगाई मदाई कोई नैतिकता नहीं थी, कोई एथिक्स नहीं था, सारा जीवन पापमय। इसलिए जब वो शरणागत हुए तो उनके अंदर कोई वो आशा नहीं रखते थे कि हमारे साथ इंसाफ हो, है कि नहीं? तो क्या नैतिकता किसी को सहायता देती है या बाधा बनती है, ये प्रश्न है। जगाई मधाई जब वो शरणागत हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है तुम एक सेवा करो, गंगा का जो घाट है उसकी मरम्मत करो, जो सब स्नान करने के लिए जाते हैं तो घाट की मरम्मत करो, कुछ सेवा करो। तो जाते घाट की मरम्मत करने तो वहां पर बाकी लोग जिनको इन्होंने पहले इतनी पीड़ा दी थी वो लोग देखते हैं, हाँ अब हाँ, 100 चूहे कहा के अब ये बिल्ली जा रही हज को, तो पत्थर मारते थे। तो ये पत्थर उठाकर वापस उनको देते थे, और मारो क्योंकि ये हमने जो तकलीफ तुम लोगों को दी है ये पत्थर क्या है उसके तुलना में। तो क्योंकि उनके जीवन में कोई नैतिकता नहीं थी लेकिन उन पापों के ग्लानी के वजह से उनके अंदर नम्रता थी तो शरणागति बहुत आसान हुई उनकी। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कई जो बहुत नैतिकतावादी होते हैं वो भगवान के सामने अपना सर नहीं झुकाते। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कई ऐसे घमंडी होते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते, मैं इनसे क्या मांगूंगा। तो इसलिए फिर भगवान कहते हैं ठीक है तुम मुझे दो अब पत्रम पुष्पम फलम तो मैं मांगता हूं। भगवान इतने नम्र हो जाते हैं, ठीक है तुम मुझसे कुछ नहीं लेना चाहते तो दो मुझे, दानवीर बनो मुझे दो, मुझे चाहिए, मैं भिक्षुक बनता हूं, पत्रम पुष्पम फलम से मुझे एक पत्ता दो, फूल दो, ये दो वो दो। हाँ तब उनको लगता है चलो मैं तो देता हूं कुछ ले लो। तो भगवान ये न के न प्रकार न आओ मेरे पास आओ। तो ये जो मोरालिटी है, अब श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में बलि महाराज इनका उदाहरण है। नरसिंह चतुर्दशी है कल, तो बलि महाराज वो प्रहलाद महाराज के कौन थे, पोते, विरोचन उनके पिता और विरोचन के पिता प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज जो कि दादा बलि महाराज के, बलि महाराज की कथा हम जानते हैं, वामन देव आए एक बौना बनकर और फिर त्रिविक्रम का साइज लेकर सब कुछ ले लिया बलि महाराज से, सब कुछ। और बलि महाराज उस समय सबसे बड़े कॉन्करर थे वो, यहां तक कि देवताओं का सब कुछ उन्होंने हर लिया था। तो बलि महाराज की तुलना एक साधक से की गई। बलि महाराज बचपन से महाजन नहीं थे अपने दादा की तरह, ही वॉज नॉट अ महाजन सिंस हिज बर्थ। बलि महाराज के बारे में बताया गया है कि वो मटीरियली बहुत एम्बिशियस थे कि मुझे ये भी प्राप्त होना चाहिए, वो भी प्राप्त होना चाहिए, और एंटी डेमिगॉड्स थे। सोचो जो कि भगवान के गवर्नमेंट के डेमिगॉड्स, उनके अगेंस्ट बलि महाराज। तो एथिकली मॉरली देखा जाए तो बलि महाराज का कोई स्टैंडिंग नहीं था, और शुक्राचार्य एथिकली मॉरली एकदम अपराइट थे, लेकिन जब शरणागति की बात आई तो बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ। और शुक्राचार्य ने वार्न किया बलि महाराज को कि ये विष्णु है, ये सब कुछ हड़प लेंगे तुम्हारा, बिल्कुल मत देना ये तीन स्टेप मांग रहे हैं, ये तीन स्टेप में सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा। तो बलि महाराज शुक्राचार्य से कहते हैं ये विष्णु है, यदि ये विष्णु है तो तुरंत उन्होंने प्रहलाद महाराज की याद की कि मेरे दादाजी ने इन्हीं विष्णु को शरणागत हुए थे, तो मुझे तो अवश्य ही देना चाहिए, देखता हूं मैं। तो वामन देव ले लिए सब कुछ और दो पग में ही सब कुछ ले लिया, तीसरा पग रखने के लिए कोई भी जगह नहीं, तो बलि महाराज अपना शीश अर्पित करते हैं, मेरे शीश पर रखो आपका तीसरा सर। तो क्या अर्थ हुआ, सर्वस्व अर्पित कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया। लेकिन वामन देव कैसा व्यवहार किए, वामन देव फिर कहे कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुकर गए, तुमने तीन पग कहा था, तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, बंदी बनाओ इसको। तो वरुण देव को बुलाया, वरुण पाश और गरुड़ जी ये सब आए वहां पर, और बलि महाराज जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पित किया, वामन देव का रेसिप्रोकेशन क्या था, बंदी बनाया। और सबके सामने भरी सभा में वामन देव बलि महाराज की टिग्गी उड़ा रहे थे, क्या कहते हो, खिल्ली उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे कि हो गया, निकल गया सब कुछ, फुस हो गया तुम्हारा, इतने बोल रहे थे, डिंगे मार रहे थे, ये दे दूंगा वो दे दूंगा, कहां है अभी सब कुछ। तो सोचो सबके सामने भगवान श्री वामन देव मजाक उड़ा रहे हैं बलि महाराज का। स्थिति देखो, कई बार अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जाए, इतना बड़ा वो राजा सम्राट बंदी बनाया हुआ है, गरुड़ जी के सामने वरुण पाश से बंधा हुआ, और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी से सहन नहीं हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बलि महाराज के डिफेंस लॉयर बन गए। वो बोले ये क्या कर रहे हैं आप, हम लोग तो हमारी आंखों में आंसू आ गए थे कि बलि महाराज ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ। तो ब्रह्मा जी वो वामन देव से कहते हैं कि अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपने ही कहा है कि कोई यदि मुझे एक पत्ता एक फूल ये सब कुछ अर्पित करता है प्रेम से तो मैं स्वीकार करता हूं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, कोई अगर फ्लावर बर्ड भी ऑफर करता है, जो फ्लावर भी नहीं है, एक सीड भी ऑफर करता है फ्लावर का जो अभी तक फुल ब्लूम भी नहीं हुआ है, कोई कली भी ऑफर करता है तो आप अपना सर्वस्व देते। ये बलि महाराज ने तो अपने आप को अर्पित कर दिया और आप इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हो, ना इंसाफी है ये, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सरासर ना इंसाफी है। परंतु बलि महाराज वो कहते हैं, देखिए बलि महाराज का क्या डिवोशनल एलिमेंट था, ये बलि महाराज ने बिल्कुल भी तकरार नहीं की, ये ब्रह्मा जी अपने खुद ही बन गए डिफेंस लॉयर, बलि महाराज ने नहीं बुलाया था, मेरी सुनवाई मेरी सफाई पेश की जाए, नहीं। तो बलि महाराज कहते हैं कि वामन देव ने मुझे वरुण पाश में बांध लिया होगा एक कैदी के समान, लेकिन मैंने इन्हें अपने भक्ति की डोरी में बांध रखा है, वो नहीं छूट के जा सकते। तो क्योंकि मैंने इन्हें कैदी बनाया इसलिए इन्होंने मुझे कैदी बनाया, ये यथामाम प्रपद्य। ये बलि महाराज का कॉन्शियसनेस था, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं मांगा। और ये सिद्ध कैसे हुआ कि सूतल लोक जो बलि महाराज को दिया गया, उनका साम्राज्य सूतल लोक के सम्राट बलि महाराज के द्वारपाल बने वामन देव, द्वारपाल डोर कीपर। और एक कथा ऐसी है कि रावण घूमते फिरते वो सूतल लोक पहुंचे, सूतल लोक का उसने ऐश्वर्य देखा, तो रावण जहां पर भी कुछ ऐश्वर्य देखता तुरंत ऐसा लोभी था वो कि मुझे मिल जाए या किसी भी तरीके से मैं भोग लूं। तो रावण ने जब देखा सुतन लोक का ऐश्वर्य तो गया, तो सामने वामन देव द्वारपाल, तो वामन देव ने एक लात मारी इस रावण को। तो ये रावण सुतल लोक से सीधा अपने लंका में जाके गिरा। देखिए एक किक, वामन देव की एक किक, और फिर उसने प्रण ले लिया सुतल लोक की ओर देखना भी नहीं मुझे। लेकिन देखो ये रावण कुत्ते की पूंछ कि वही वामन देव रामचंद्र जी के रूप में आए, ये सुधरा नहीं फिर भी लात खाकर भी। तो लक्ष्मी देवी आई क्योंकि उनके पति द्वारपाल बन गए। क्या बन गए? डोरकीपर होता ना, वो वॉचमैन गेट खोलता है बंद करता है, वो बन गए लक्ष्मी के पति। क्या बन गए देखो। तो लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी आकर वो क्या कंप्लेन कर रही थी, उनका उनकी तकरार क्या थी? वो कंप्लेन ये कि सीधा गए बलि महाराज के पास और बलि महाराज को उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट किया कि जब आप अपने सभागृह से बाहर आते हो तो आप डिसाइड कर लो कौन से दरवाजे से बाहर आओगे पहले, कि जैसे हमारे इतने सारे दरवाजे हैं वैसे उनके सभागृह के बहुत सारे दरवाजे। तो यहां पर भी कई बार समझ में नहीं आता कि कोई यहां से घुस रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। हालांकि इतना सा टेंपल हॉल है लेकिन समझ में नहीं आता है कोई एंट्री एग्जिट कहां से हो रहा है। तो वैसे ही लक्ष्मी देवी वो बलि महाराज से कहती है कि आप जब भी आपके असेंबली हॉल से बाहर आते हो तो डिसाइड करके आओ कौन से दरवाजे से आओ। तो उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि मेरे जो पति है ना वो ऐसी सेवा आपकी कर रहे हैं, आप इस दरवाजे से बाहर जाने का सोचते हो तो तुरंत वहां खड़े हो जाते हैं, फिर अचानक आपने माइंड चेंज कर लिया कि नहीं मैं इस दरवाजे, तो वो भाग कर इधर आ जाते और बहुत से दरवाजे थे किसके, बलि महाराज के सभागृह के बहुत से दरवाजे थे। तो भगवान कॉन्स्टेंटली घूमते फिरते कि बलि महाराज की सेवा इस प्रकार से वो करते। तो यहां पर बलि महाराज और शुक्राचार्य का कंपैरिजन किया गया है कि शुक्राचार्य एक मॉरलिस्ट और बलि महाराज जो कि मटेरियली बहुत एम्बिशियस थे और देवताओं को उन्होंने इतनी तकलीफ दी। तो अंत में सिद्ध यह हुआ कि इंद्र जो कि वामन देव को भेजे थे बलि महाराज से सब कुछ हड़पने के लिए, तो इंद्र को केवल उनका राज्य मिला। क्या मिला? उनका राज्य मिला, लेकिन बलि महाराज को भगवान मिल गए। तो कौन प्रॉफिटेबल था? क्यों? क्योंकि बलि महाराज इंसाफ नहीं चाहते थे। ही वॉज नॉट सीकिंग जस्टिस, ही वॉज ओनली सीकिंग शेल्टर। That was the क्वालिटी ऑफ बलि महाराज। और उन्होंने अपने दादा को सामने रखते हुए प्रहलाद महाराज को, कि प्रहलाद महाराज के जीवन में इतनी तकलीफ, मेरे दादाजी के जीवन में इतनी तकलीफें हुई लेकिन कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। जब नरसिंह देव आए प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज का एक भी श्लोक नहीं कंप्लेन का, अरे बहुत जल्दी आए। कई बार बोलते हैं ना लोग सरकास्टिकली, तो प्रहलाद महाराज अच्छा अब मिला टाइम आने का। एक बार भी कोई कंप्लेन नहीं प्रहलाद महाराज, नॉन कंप्लेनिंग सरेंडर, ये बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज से सीखा। और ये बताया गया है कि बलि महाराज के अंदर हिरण्यकश्यपु के ट्रेसेस भी थे, मटेरियली एम्बिशियस, डेमीगॉड्स को भरा बुला कहना, उनको तकलीफ देना, ये हिरण्यकश्यपु से मिला था पड़दादा जो बलि महाराज। तो एक साधक के अंदर भी ये दोनों ट्रेसेस होते हैं, हिरण्यकश्यपु के ट्रेसेस और प्रहलाद के ट्रेसेस। लेकिन जब वामन देव ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो क्या हमारे अंदर वो बलि महाराज जैसे गुण हैं कि हम प्रहलाद महाराज के पदचिन्हों को उनका पालन करें या
हिरण्यकश्यपु का।
तो अब वामन देव से जब पूछा गया कि बलि महाराज के आप द्वारपाल बने, क्या ऐसा गुण आपने बलि महाराज में देखा, तो वामन देव कहते हैं आर्जवम, सिंप्लिसिटी। वामन देव कहते हैं सिंप्लिसिटी, हालांकि इतना बड़ा सम्राट ये, लेकिन मैंने जब तीन पग भूमि मांगी, एकदम जो सिंपल होता है कि बिना सोचे समझे इसने दे दिया। लेकिन शुक्राचार्य, हालांकि बाहर का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था शुक्राचार्य का, लेकिन अंदर सिंप्लिसिटी नहीं थी, कॉम्प्लिकेशन था, ऐसे क्यों वैसे क्यों, संचय नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हड़प लेगा, ये वो, मेरा क्या होगा। तो एक्सटर्नली बलि महाराज का रहन सहन बहुत एक राजसी था, लेकिन इंटरनली वामन देव ने क्या देखा, ही इज वेरी सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड। और शुक्राचार्य एक्सटर्नली वॉज लिविंग लाइक अ ब्राह्मण, बट इंटरनली वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यदि कोई अपने आप को बहुत बड़ा मॉरलिस्ट मानता है, तो भगवान ये सिद्ध कर देते हैं कि तुम्हारे तथाकथित मॉरलिटी की वजह से तुम मेरी शरण ग्रहण नहीं कर पा रहे। और इतिहास बताता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा मॉरलिस्ट हो, उसके इतिहास में जाके देखो, कहीं ना कहीं उसने कुछ इमोरल एक्टिविटी की है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज उन्होंने झूठ बोलने से मना किया, है ना, ये तो प्रसिद्ध है। नहीं नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो भीमसेन कहते हैं क्यों झूठ बोल रहे हो, जो द्यूत क्रीड़ा थी वो क्या था, जो खेलने गए थे, द्यूत गैम्बलिंग डिस्ट्रॉयज व्हाट, ट्रुथफुलनेस, गैम्बलिंग डिस्ट्रॉयज ट्रुथफुलनेस। तो चाहे किसी के भी आदेश पर आप खेल रहे हो, गैम्बलिंग मींस यू आर बीइंग अनट्रुथफुल। तो यहां तक कि युधिष्ठिर महाराज जैसे नैतिकतावादी कौन हो सकते हैं, उनका इतिहास देखा जाए, कर्ण, उनको हम नहीं छोड़ सकते। कर्ण जो कि बहुत डिंगे मारता था कि मेरे जैसा दोस्त कोई नहीं मिलेगा, किसका दोस्त, दुर्योधन का, दोस्ती हो तो कर्ण दुर्योधन जैसी, दोस्ती, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, दोस्ती हो तो कर्ण और दुर्योधन जैसी। लेकिन यही कर्ण जो कि दुर्योधन को इतना बड़ा दोस्त मानता था, अपने आप को कहता था कि मैं इतना बड़ा दोस्त हूं दुर्योधन का, जब सबसे ज्यादा जरूरत दुर्योधन को पड़ी कर्ण की, तो कर्ण अपना अहंकार सामने रख दिया। कब जरूरत पड़ी, महाभारत के युद्ध के समय, जब भीष्म पितामह सेनापति बने, तो कर्ण ने कहा जब तक ये जीवित है मैं नहीं लड़ूंगा। दुर्योधन कहा अरे, बोला जो भी है मैं नहीं लड़ूंगा ये भीष्म जब तक है, क्योंकि भीष्म ने एक बार दुर्योधन कर्ण का अपमान किया था, भीष्म ने कर्ण को अर्धरति कहा था, अर्धरति है ये, क्या अर्धरति। तो वो अंदर, उसके अंदर तकरार थी वो भीष्म के प्रति, अगेंस्ट। तो अब यदि भगवान कृष्ण पहुंचे वहां पर, भगवान कृष्ण सबको एक्सपोज किए, ऐसे ये जो तथाकथित इनकी दोस्ती नैतिकता उसको एक्सपोज किए, तो भगवान कृष्ण पहुंचे तो कहां गई तुम्हारी दोस्ती दुर्योधन के प्रति, मतलब यहां पर तुम्हारे प्रति जो भीष्म देव ने अपमान किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया दुर्योधन की दोस्ती के तुलना में। तो भगवान कहते ठीक है तू हमारे साइड में आ जाओ। भगवान भी देखो कितने बुद्धिमान, सही टाइमिंग लगाया, सब लोग वहां पर मैच लड़ रहे हैं, ये पेविलियन में बैठा है कर्ण, तो भगवान गए पेविलियन में, ठीक है तुम हमारे टीम में आ जाओ। कर्ण कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो मैं कदापि नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दुर्योधन का दोस्त हूं। अरे भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती, तुम अपने टर्म्स पर दोस्ती निभा रहे हो। एक तरफ बोलते हो कि मैं दुर्योधन का दोस्त हूं और दूसरी तरफ दुर्योधन को जब सबसे ज्यादा आवश्यकता है तुम अपना अहंकार लेके बैठे हो कि मुझे अपमान किया था भीष्म ने, जब तक ये नहीं मरेंगे नहीं आऊंगा मैं। एनी मॉरलिस्ट हैज गॉट द हिस्ट्री ऑफ बीइंग इमोरल। गांधी जी की चर्चा चल रही काफी दिनों से, तो जिसने असैसिनेट किया गांधी जी को वो कहता है ये हे राम वगैरह कुछ बोला ही नहीं था उन्होंने। प्रभुपाद को एक बार पूछा एक शिष्य ने, प्रभुपाद गांधी जी चैंटेड हे राम व्हेन ही वाज असैसिनेटेड, व्हाट डू यू हैव टू से? प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आई वाज नॉट देयर। नो कॉमेंट्स, आई वॉज नॉट देयर। तो ये गांधी जी के बेटे को कहता है नथुराम गोडसे कि ये मत समझो कि तुम्हारे पिता ने आ किया, खाली आ ए राम वगैरह कुछ नहीं था, मैं था वहां, मैं खुद सामने, मैंने ही मारा था। और वो उसने कहा, उसका लॉजिक ठीक था, उसने कहा कि ठीक है अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने हे राम कहा, विच मीन्स ही डिफीटेड हिज फिलोसफी, क्योंकि उनके अनुसार राम और रहीम एक थे, तो रहीम का नाम क्यों नहीं चैंट किया साथ में, राम का ही क्यों किया? सो वन हु वॉज क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी अपराइट मॉरलिस्ट, जब सर्कमस्टेंस आया तो समझ में आ गया है ना। तो इसलिए भगवान सबके लिए सिचुएशंस क्रिएट करके रखते हैं, चाहे कोई अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज माने, भगवान है ठीक है चल देखते हैं इस सिचुएशन में कितना दिग्गजपना दिखाता है। तो अब साधना भक्ति में हम कैसे समझे इसे? साधना भक्ति में कई बार होता क्या है कि हम जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं हमारा उस पर जोर ज्यादा रहता है ना, उसका प्रीचिंग हम बहुत हाई वॉल्यूम में करते हैं। जैसे कि कोई यदि बुक डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनका लेक्चर सुनो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली वे टू प्लीज प्रभुपाद एंड द ओनली वे टू प्लीज भक्ति सिद्धांत, ओनली वे टू प्लीज चैतन्य महाप्रभु, ओनली वे टू प्लीज राधा रानी, यदि भगवत धाम जाना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो किसी काम के नहीं आओ। क्योंकि उसका वो एरिया स्ट्रांग है, जिसका जो एरिया स्ट्रांग रहता है वहां पर वॉल्यूम बहुत रहता है। किसी का मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है, किसी का वो मॉर्निंग प्रोग्राम वो एरिया थोड़ा फीका है लेकिन उसका कोई दूसरा एरिया स्ट्रांग रहेगा। किसी का डीटी वर्शिप स्ट्रांग है तो बिना डीटी वर्शिप के कोई काम का नहीं है आपका जीवन। किसी का होली नेम चैंटिंग बहुत स्ट्रांग है, बोले क्या डीटी वर्शिप तो है, तो द्वापर युग इनका था, कलयुग मीन्स हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो किसी का प्रीचिंग कॉलेज प्रीचिंग, बस कॉलेज प्रीचिंग ही एकमेव उपाय है। किसी का कॉलेज प्रीचिंग, किसी का डीटी वर्शिप, किसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो एरिया में हम स्ट्रांग रहते हैं हमारा वो एरिया में एकदम बोलबाला रहता है, लेकिन फिर बाकी एरिया में हम एकदम दूर से देखते हैं, ठीक है ठीक है, साइलेंट स्पेक्टेटर। और भगवान क्या करते हैं, जहां पर हम साइलेंट स्पेक्टेटर है वो एरिया को सामने रखते हैं हमारे हर समय, वहां पर हमारा टेस्टिंग होता है फिर। तो जब हमारे साथ, जैसे सारे उदाहरण हम देखें, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, परीक्षित महाराज, पांडव, इनके जीवन में केवल तकलीफें तकलीफें इतनी थी, मेजर तकलीफें, लेकिन किसी ने भी इंसाफ नहीं मांगा, किसी ने भी ये नहीं भगवान से कहा या किसी और से कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो सब ठीक है लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और उसमें उन्होंने भगवान की शरणागति उस कॉन्शियसनेस में की, और वो सबसे, तो ये एक जो मुद्दा है इंसाफ मांगने का और टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, ये साथ साथ नहीं चल सकता। इधर वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा और वी सीक जस्टिस। जैसे जस्टिस, शेल्टर चला गया, जैसे शेल्टर, जस्टिस हट गया। और सेकंड भ्रांत धारणा एक साधक की रहती है कि यदि मेरे जीवन में नाइंसाफी हो रही है तो कई बार हम सोचते हैं भगवान टेस्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट सो ग्रेट दैट कृष्णा विल डायरेक्टली टेस्ट अस। सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारे ही कर्म है। ब्रह्मा जी तक बोल दिए तत्तेनो कंपां सुसिमक्ष मानो, कि ये मेरे भुंजान कर्मा, मेरे कर्मों की वजह से मुझे जो कुछ मिल रहा है। हम, जैसे कहा जाता है कि फॉर अ नियोफाइट डिवोटी ट्रबल्स एंड ट्रिबुलेशंस इज फॉर प्यूरिफिकेशन एंड फॉर एडवांस डिवोटी इट इज फॉर ग्लोरिफिकेशन। तो अब यदि हम ये देखें कि मेरे जीवन में यदि कोई तकलीफें आ रही हैं और जब मेरे जीवन में वो तकलीफें दूर हो जाती हैं, तो हमें ये भी नहीं समझना चाहिए, हाँ गुरु और बाकी वैष्णव यदि ये समझे कि भगवान की कृपा हो गई, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भाई मेरा जो बुरा कर्म था वो कटा है बस। जैसे जब भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप दिखाया भगवद गीता, विश्वरूप दिखाने के पश्चात 12वां अध्याय है उसमें 42 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव भगवान अर्जुन को लिस्ट कर सुना रहे, अर्जुन को यह बताने के लिए कि अर्जुन ये मत समझना है तुम्हारे अंदर ये सारे गुण है इसलिए तुमको मैंने विश्वरूप दिखाया, मैंने अपनी अहेतु की कृपा से तुम्हें दिखाया। अर्जुन को अहंकार ना हो जाए इसलिए 12वें अध्याय में भगवान वो लिस्ट देते हैं सब क्वालिटीज की, तो अर्जुन समझ आना मेरे अंदर तो ये सब क्वालिटीज नहीं है फिर भी मैंने विश्वरूप दिखाया। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि भक्ति में ये दो जो मुख्य गुण है, एक है डिटर्मिनेशन और एक है पेशेंस। तो साधना भक्ति में टिके रहने के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा कब मिलेगी उसके लिए पेशेंस चाहिए। अगर हमारे पास केवल डिटर्मिनेशन है, पेशेंस नहीं है, तो फिर वो हम उस मेंटालिटी में चले जाते हैं मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस हैज टू बी बैलेंस्ड। एक श्री वैष्णव, इनके जीवन की एक कथा है कि इतने ये भगवान श्री रंगनाथ के शरणागत भक्त और उनके सरलता और शरणागति की वजह से बहुत से अन्य उनसे ईर्ष्या करना प्रारंभ किए। तो ये रोज कावेरी स्नान के लिए अपने घर से निकलते, कावेरी में स्नान करते और फिर अपने शालिग्राम की पूजा करते। तो ये जो कुछ ईर्ष्यालु थे ब्राह्मण, उन्होंने एक दिन
और शिल प्रभु
कि चलो देखते हैं इनका मजाक उड़ाते हैं। तो इनके घर के चौखट के ऊपर इन्होंने जूते चप्पलों की माला ऐसे टंगा के रखी, और जैसे ही बाहर आएंगे तो ऊपर से चौखट से वो जूते चप्पलों की माला इनके गले में गिरेगी। तो ये सुबह सुबह बाहर निकले और वैसे ही हुआ, दरवाजा खोला, दरवाजे खोलने की वजह से जो आहट हुई वो जूते चप्पलों की माला इनके गले में। तुरंत इन्होंने एक श्लोक कंपोज किया, वो श्लोक ये था कि हे रंगनाथ, हे भगवान, जो ज्ञानी होते हैं वो ढूंढते हैं ज्ञान को आपके अंदर, जो योगी होते हैं वो सिद्धियों को ढूंढते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो दूसरे भक्तों की चरण धूलि को ढूंढते हैं। तो धन्यवाद। तुरंत ये सारे जो छिपे हुए मजाक उड़ाने वाले उस धारणा में थे, आके उन्होंने दंडवत किया इनको। तो ये जो हम डिटर्मिनेशन, निष्ठा और धैर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गदाधर पंडित का उदाहरण है कि गदाधर पंडित ये ऐसे पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के कि जो कभी कोई कंप्लेन नहीं करते थे। तो एक ऐसे भागवत के कमेंटेटर आए नवदीप में और ये अपने जो भी तथाकथित कमेंट्री बाकियों को सुनाना प्रारंभ किए तो सभी भक्तों ने इन्हें दुर्लक्ष कर कर निकाल दिया, नहीं सुनना हमें कुछ भी। लेकिन गदाधर पंडित वो इतने नम्र थे कि वो इनको कुछ मना भी नहीं कर पाते थे, तो वो ठीक है बोलो। हालांकि वो प्रामाणिक शुद्ध भक्त थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वो मतीन ऐसा उनका नेचर था, एकदम सौम्य। तो सभी बाकी पार्षद चैतन्य महाप्रभु के गदाधर पंडित की मजाक उड़ाया करते थे, यारे तू किसके भी मुंह से सुनता रहता। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु वो भी गदाधर पंडित को एक बार ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया कि तुम किसी के भी कमेंट्री सुनते हो। तो गदाधर पंडित वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा बन चुका है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि आंतरिक तरीके से ये केवल मुझे शरणागत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित के इस गुण को देखते हुए, गदाधर पंडित ने कहा कि ठीक है यदि मुझे करोड़ों जन्म भी लग जाएंगे लेकिन मैं कभी अपने शरणागति से डगमगाऊंगा नहीं। कौन सी शरणागति? आपके प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर गदाधर पंडित के इस गुण को देखते हुए कहा कि ये एक जो भक्त हैं जिनके अंदर निष्ठा के साथ ऐसा धैर्य है, निष्ठा अपने स्वयं की साधना के लिए और धैर्य भगवान की कृपा की लालसा के लिए। इसलिए जो शरणागति के छह लक्षण बताए गए हैं हमारी परंपरा में, सबसे पहला लक्षण शरणागति का क्या बताया गया है? अनुकूल्यस्य संकल्प। उसका संकल्प है कि मैं अनुकूल स्थितियों को ही अपने जीवन में साथ में रखूंगा। तो अनुकूल्यस्य संकल्प जब होता है तब ही वो प्रतिकूल्य से वर्जनम कर सकता है। तो ये कनेक्टेड है जो छह लक्षण है शरणागति के। व्हेनेवर ही इज एक्सेप्टिंग फेवरेबल सिचुएशंस देन ओनली ही कैन रिजेक्ट अनफेवरेबल, अदरवाइज ही कैन नॉट रिजेक्ट अनफेवरेबल। तब जाकर प्रतिकूल्य से वर्जनम हो सकता है, और जब प्रतिकूल्य से वर्जनम होगा तब जाकर रक्षसिति विश्वास, तब उसका जो विश्वास है भगवान के अंदर। हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? पेशेंस। और जब पेशेंस नहीं होगा तब वो इंसाफ मांगेगा। देयर इज नो पेशेंस देन दैट साधक स्टार्ट्स टू डिमांड जस्टिस। तो रक्षसि इति विश्वासो और गोप्तृत्वे वर्णम तथा, ये नेक्स्ट फोर्थ सिम्टम। कौन सा विश्वास? कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे मेंटेनर हैं, ये विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, और उसके पश्चात आत्म निक्षेप। तब जाकर जो बलि महाराज ने किया, क्या किया? आत्म निक्षेप, अपना सर्वस्व अर्पित किया। और फिर लास्ट स्टेज जिसके अंदर वो कीर्तनीय सदा हरि हो सकता है वो है कार्पण्य, ह्यूमिलिटी। तो देखो ह्यूमिलिटी कब आता है, एक्चुअल ह्यूमिलिटी कम्स आफ्टर अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षसति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, लास्ट ह्यूमिलिटी, तब जाकर वो कीर्तनीय सदा हरि के स्टेज को प्राप्त कर सकता है। व्हाट इज रियल ह्यूमिलिटी? एक और श्री वैष्णवाचार्य पराशर भट्ट, इनकी बहुत ही सुंदर कथा है। एक दिन पराशर भट्ट रंगनाथ के ऑल्टर में वो पूजा कर रहे थे अन्य पुजारियों के साथ। सोचिए रंगनाथ जी जिनकी आराधना साक्षात रामचंद्र जी ने की, ये डीटी के ऑल्टर में पूजा कर रहे हैं पराशर भट्ट, और एक कौवा ऑल्टर के अंदर उड़ते हुए अंदर आ जाता है। और बताया गया है कि पक्षियों में पक्षी कौवे को चंडाल बोलते हैं, मतलब पक्षियों में जो गिरा हुआ सबसे वो है कौवा, शेड्यूल कास्ट उनके अंदर। तो ये कौवा रंगनाथ जी के ऑल्टर में प्रवेश करता है, तो सारे जो पुजारी हैं वहां पर तुरंत कौवे को बाहर निकालते हैं, दे चेज द क्रो आउट, और सब अलग अलग प्रकार के शुद्ध द्रव्य से साफ करते हैं कि इसने पूरा गंदा कर दिया। तब दूसरे दिन वापस जब पूजा प्रारंभ होती है तो पराशर भट्ट वो सब लेकर आते हैं, प्यूरिफिकेटरी आर्टिकल्स सब साफ करना शुरू कर दें। तो बाकी पुजारी पूछते हैं क्या कर रहे हो? अरे कल वो कौवा एंट्री किया, आपने पूरा उसको साफ किया ऑल्टर को, तो आज नहीं करना? बोला आज कौन सा कौवा, बोला ये जो खड़ा इधर। उनकी ऐसी ह्यूमिलिटी थी, वो बोले कि उससे ज्यादा बदतर मैं कौवा हूं, अगर एक वो कौवा एंट्री कर रहा है और आप लोग पूरा उसको गर्भगृह को साफ कर रहे हो, तो सोचो ये जो कौवा एंट्री किया है कितना आपको और साफ करना पड़ेगा। तो ये जो नॉन कंप्लेनिंग के एकदम दूसरे एक्सट्रीम का जो नेचर है वो है ये कार्पण्य, जो कि शरणागति टेकिंग शेल्टर का लास्ट स्टेज है। तो हम लोग यहां पे चर्चा क्या कर रहे हैं, टेकिंग शेल्टर वर्सेस सीकिंग जस्टिस। तो सोचो दिल्ली कितनी दूर है, इसलिए प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, पांडव, इन सब से हमें हमारी साधना भक्ति में सर्वप्रथम ये सीखना चाहिए कि नेवर अप्रोच कृष्णा फॉर जस्टिस। राधानाथ महाराज के पास एक उनके शिष्य आए थे, न्यू वृंदावन में ये बात हुई थी, तो उनके साथ नाइंसाफी हुई थी मंदिर में, होता ना कई बार, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, भक्तों ने नाइंसाफी की है, तो उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई थी, तो महाराज के पास गए और ये सही थे और जो इनके साथ जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था। जब वो महाराज के पास गए, महाराज सच रॉन्ग थिंग हैज हैपेंड व्हेन आई वाज नॉट रॉन्ग, तो महाराज ने एक ही लाइन में आंसर दिया, वैष्णव मींस वन हु इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, बिकॉज राइट एंड रॉन्ग, मेरे साथ इंसाफी ना इंसाफी जो कुछ, ये जो कॉन्शियसनेस है ये केवल आपको हेल और हेवन तक पहुंचाएगा, है ना। जस्टिस मींस व्हाट, पनिशमेंट और रिवॉर्ड, है ना। सो पनिशमेंट रिवॉर्ड मेंटालिटी इज हेल एंड हेवन मेंटालिटी. एंड टू गो बियॉन्ड बीइंग राइट, नॉन कंप्लेनिंग मेंटालिटी, दैट विल ओनली फेच यू वैकुंठ. केवल वही वैकुंठ हमें प्राप्त कराएगा. तो अल्टीमेटली जो भी हमने चर्चा की उसका जिस्ट क्या है, व्हेन वी सीक जस्टिस वी सिंपली रीच टू हेवन और हेल, व्हेन वी सीक शेल्टर वी रीच वैकुंठ. एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति, टू सीक शेल्टर एंड नॉट डिमांड एनी जस्टिस. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम. किसी का कोई प्रश्न है? तो इसी मुद्दे को हम, कल नरसिंह चतुर्दशी है, इसे और हम इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि आज हमने बलि महाराज का एग्जाम्पल लिया कि कैसे बलि महाराज ने कभी इंसाफ नहीं मांगा लेकिन अपने आप को शरणागत किए, और उन्होंने ये सीख ली प्रहलाद महाराज से, जो कि उनके दादाजी रोल मॉडल उनके थे प्रहलाद महाराज, जिनके शरणागति और भक्ति की वजह से प्रकट हुए भगवान श्री नरसिम्हदेव, जिनकी जयंती हम कल मना रहे हैं. और कल हमारे नए मदन गोपाल जी राधा रानी का किचन खुलने वाला है, तो उसका भी इनॉग्रेशन कल होगा. जय श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.